श्याम कुंड राधा कुंड गिरी का वर्णन की जाए, गंगा माई की जाए, यमुना माई की जाए, वृंद देवी तुलसी हरिनाम संकीर्तन की जाए, सौ एक भक्त की जाए, और जोरी सुदर्शन और जोरी सुदर्शन और जोरी ओम अज्ञान तिमरन भक्त्य ज्ञानाशलाकया चक्षुरुन्मीलिता येन तस्मै श्रीगुरवे श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितां येन भूतले स्वयं रूपकदाहनं ददाति शतमानं वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावने जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद शिवासादि हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे श्रीमद् भगवद गीता यथारूप ये अध्याय 114 और बोर्ड पे श्लोक संख्या 21 और 22 है, उससे पहले जो श्लोक है 19 से लेकर 20 ये हम पढ़ देते हैं। साधो शूद्राष्ट्रा नाम हृदय नवश्य पृथ्वी इन विभिन्न शंखों की ध्वनि कोलाहलपूर्ण बन गई, जो आकाश तथा पृथ्वी को शब्दायमान करती हुई गजराज के पुत्रों के हृदय को भजी करने लगी। प्रताप पर सुनिए, जब भीष्म तथा दुर्योधन के पक्ष के अनेकों ने अपने अपने शंख बजाए तो पांडवों के हृदय विलीन नहीं हुए। ऐसी घटनाओं का वर्णन नहीं मिलता। ऐसी घटनाओं का वर्णन नहीं मिलता, किंतु इस विशिष्ट श्लोक में कहा गया है कि पांडव पक्ष के शंखनाद से धनराज के पुत्रों के हृदय विलीन हो गए। इसका कारण स्वयं पांडव और भगवान कृष्ण में उनका विश्वास, परमेश्वर की शरण करने वाले को किसी प्रकार का भय नहीं रहना, रह जाता चाहे वे कितना ही विपत्ति में क्यों ना। अभी सूक्त संख्या 20 है। अथ विविस्तान दृष्टा ध्याता प्राण कपिध्वजा प्रवृत्ते शस्त्र संपाते धनुर्धनुद्यम पांडवा ऋषिकेशम तदा वाक्यम इदमहामही पते। उस समय हनुमान संकेत ध्वजा लगे रथ पर आसीन पांडव पुत्र अर्जुन अपना धनुष उठाकर तीर चलाने के लिए उदित हुए। हे राजन, धनराज के पुत्रों को व्यूह में खड़ा देखकर अर्जुन ने श्री कृष्ण से ये वचन कहे। युद्ध प्रारंभ होने ही वाला था। उपर्युक्त कथन से ज्ञात होता है कि पांडवों की सेना की अप्रत्याशित व्यवस्था से धनराज के पुत्र बहुत कुछ निरुत्साहित थे, क्योंकि युद्ध भूमि में पांडवों का निर्देशन भगवान कृष्ण के आदेशानुसार हो रहा था। अर्जुन की ध्वजा पर हनुमान का चिन्ह भी विजय का सूचक है, क्योंकि हनुमान ने राम तथा रावण युद्ध में राम की सहायता की थी, जिससे राम विजयी हुए। इस समय अर्जुन की सहायता के लिए उनके रथ पर राम तथा हनुमान दोनों उपस्थित थे। भगवान कृष्ण साक्षात राम है, और जहाँ भी राम हो रहे वहाँ उनके नित्य से हनुमान होते हैं तथा उनकी नित्य संगी संगनी वैभव की देवी सीता उपस्थित रहती हैं। अतः अर्जुन के लिए किसी भी शत्रु के भय का कोई कारण नहीं था। इससे बड़े इंद्रियों के स्वामी भगवान कृष्ण निर्देश देने के लिए साक्षात उपस्थित थे। इस प्रकार अर्जुन को युद्ध करने के मामले में सारा सब परामर्श प्राप्त था। ऐसी स्थितियों में इनकी व्यवस्था भगवान ने अपने शाश्वत भक्त के लिए की थी। निश्चय विजय के लक्षण स्पष्ट थे। आज का श्लोक है। अर्जुन उवाच तेनयोः उभयोः मध्ये रथं स्थाप्य निक्षिता यावत् एतान् वीक्षे अहं योद्धुकामान् अवस्थितान् कैः मया योगव्यम अस्मिन् रण समुद्यमे। अभी सब लोग चारण करेंगे। अर्जुन उवाच तेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थाप्यमेच्छुता यावदेता निरीक्षेऽहम् योगु कामानवस्थिता कैर्मया सयाद्धव्यम् अस्मिन् ऋणा समुद्यमे। बोलिए। Thank you. समय का ध्यान रख सकते हैं। आखिरी ये लाइन भी है इसमें, वो भी आप बोल सकते हैं। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा अर्जुन ने कहा है, अच्युत कृपा करके मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में ले चले, जिससे मैं यहाँ उपस्थित युद्ध की अभिलाषा रखने वालों को और शस्त्रों की इस महान परीक्षा में जिनसे मुझे संघर्ष करना है उन्हें देख सकूं। तात्पर्य, यदि भी श्री कृष्ण साक्षात की भगवान है किंतु वह अयुद्ध की कृपावश अपने मित्र की सेवा में लगे हुए थे, वे अपने भक्तों पर स्नेह दिखाने में कभी नहीं चूकते, इसलिए अर्जुन ने उन्हें अच्युत कहा है। सारथी रूप में उन्हें अर्जुन की आज्ञा का पालन करना था और उन्होंने इसमें कोई संकोच नहीं किया, उन्हें अच्युत कहकर संबोधित किया गया है। यद्यपि उन्होंने अपने भक्त का सारथी पर स्वीकार किया था किंतु इससे उनकी परम स्थिति अक्षुण बनी रही। प्रत्येक परिस्थिति में वे इंद्रियों के स्वामी श्री भगवान ऋषिकेश हैं। भगवान तथा उनके सेवक का संबंध अत्यंत मधुर एवं दिव्य होता है। सेवक स्वामी की सेवा करने के लिए सदैव उद्यत रहता है और भगवान भी भक्त की कुछ न कुछ सेवा करने की कोशिश में रहते हैं। वह इसमें विशेष आनंद का अनुभव करते हैं कि वह स्वयं आज्ञादाता न बने अभी तो उनके शुद्ध भक्त उन्हें आज्ञा दें, क्योंकि वह स्वामी हैं, अतः सभी लोग उनके आज्ञा पालक हैं और उनके ऊपर उनको आज्ञा देने वाला कोई नहीं है। किंतु जब वह देखते हैं कि उनका शुद्ध भक्त आज्ञा दे रहा है तो उन्हें दिव्य आनंद मिलता है। यदि भी समस्त परिस्थितियों में अच्युत रहने वाले हैं, भगवान के शुद्ध भक्त होने के कारण अर्जुन को अपने बांधवों से युद्ध करने की तनिक इच्छा नहीं थी, किंतु दुर्योधन द्वारा शांतिपूर्ण समझौता ना करके हट धर्मिता पर उतारू होने के कारण उसे युद्ध में आना पड़ा। वह ये जानने के लिए अत्यंत उत्सुक था कि युद्ध में कौन कौन से अग्रणी व्यक्ति उपस्थित हैं। यदि भी युद्ध में शांति प्रयासों का कोई प्रश्न नहीं होता तो भी वह उन्हें फिर से देखना चाह रहा था और ये देखना चाह रहा था कि वह इस अवांछित युद्ध पर किस हद तक तुले हुए हैं। हरे कृष्ण। तो यहाँ पे जो रात जैसे हम जानते हैं अध्याय के प्रारंभ में जानना चाह रहे थे पांडवों और कौरवों के कार्यकलापों के बारे में, और संजय जो है इसी का ही वर्णन कर रहे हैं इस अध्याय में कि अर्जुन ने यहाँ पर परम भगवान श्री कृष्ण को क्या कहा। तो यहाँ पर जो अच्छे शब्द की बात की गई है उसकी हम व्याख्या सबसे पहले करेंगे। अच्युत का अर्थ क्या होता है कि परम भगवान श्री कृष्ण जो है अपना स्नेह दिखाने में, अपना प्रेम दिखाने में, अपने भक्तों के प्रति प्रेम दिखाने में कभी च्युत नहीं होते हैं। तो ये यहाँ पर बताया, और अच्युत का मतलब ये भी है जिनका गौरव जिनकी महिमा कभी कम नहीं होती है, बल्कि भगवान श्री कृष्ण की जो महिमा है वो बढ़ती रहती है, दिन प्रतिदिन बढ़ती रहती है। शास्त्रियों के श्लोक में भी श्री चैतन्य महाप्रभु क्या करें, आनंदाम बुद्धि वर्धनम प्रतिपदम पूर्णामदास्वादनम, तो आनंद की वृद्धि होती रहती है। भगवान के बारे में जितना अधिक हम सुनते हैं भगवान की महिमा बढ़ती रहती है, ये कभी च्युत नहीं होती है। और अब देखते हैं कि परम भगवान श्री कृष्ण ने कई अवतार लिए और भगवान ने अपनी लीलाएँ भी की इस पृथ्वी में, लेकिन साथ में परम भगवान श्री कृष्ण गोलोक वृंदावन में बाद में नित्य लीला करते हैं, तो उन लीलाओं से कभी च्युत नहीं होता है। क्योंकि यहाँ लीला कर रहे हैं इसका अर्थ नहीं है कि वहाँ भी लीलाओं से च्युत हो जाए भगवान, तो वहाँ भी लीलाएं चल रहे हैं। गोलोक एवं निवसति अखिलात्म भूतो, क्योंकि परम भगवान अपना इतना सारा विस्तार करते हैं, इतने सारे अवतार लेते हैं, परमात्मा के रूप में हम सबके हृदय में वास करते हैं, लेकिन फिर भी परम भगवान श्री कृष्ण अपने आप में हमेशा अच्युत रहते हैं। और तो और परम भगवान श्री कृष्ण कई और भी जो जलचर हैं या थलचर हैं, इन सब योनियों के साथ भी परम भगवान श्री कृष्ण प्रकट होते हैं, जैसे कि वराह अवतार हुआ, हंस अवतार हुआ, मत्स्य अवतार हुआ, भगवान श्री राम का अवतार हुआ, वामन अवतार हुआ। ये सारे जो अवतार हैं, ये सारे अवतार हुए और हर स्थान में हर परिस्थिति में भगवान प्रकट होते हैं, देवताओं के मध्य में भी प्रकट होते हैं, लेकिन फिर भी परम भगवान श्री कृष्ण की अपनी जो स्थिति है वो फिर भी क्या रहती है, अच्युत रहती है। और जो मत्स्य अवतार भी धारण करते हैं, ये वराह अवतार भी धारण करते हैं, तभी क्या होता है, उनका स्वभाव दिव्य ही रहता है। भगवान कह रहे हैं गीता में, जन्म कर्म चमे दिव्यम। भगवान कहते हैं अब मेरा जो जन्म है, मेरा कर्म है, वो क्या है, दिव्य है। अगर मैं वराह के रूप में ही प्रकट होता हूँ या मत्स्य के रूप में ही प्रकट होता हूँ, तो तब भी मत्स्य का स्वभाव, मत्स्य के गुण मेरे भीतर नहीं आते हैं, वराह के या सूर्य के गुण मेरे अंदर नहीं आते हैं। उस स्थिति में भी ऐसे रूप धारण करने पर भी भगवान जो है हमेशा दिव्य परिस्थिति में रहते हैं, दिव्य स्थिति में रहते हैं, और इस कारण से भगवान क्या है, अच्युत हैं। तो ये भी एक कारण है अच्युत होने का। इसी तरह से हम शिलाएँ देखते हैं, बहुत सारी शिलाएँ जिनकी हम रोज पूजा करते हैं, अभिषेक करते हैं, आराधना करते हैं। यहाँ पर मंदिरों में प्रत्येक मंदिर में आप देखेंगे विग्रह के साथ साथ शिला भी होती है, शिला का रखना अनिवार्य होता है अक्षय विग्रह की सेवा में। तो ये जो शिला है, हालांकि देखने में लगता है पत्थर है, लेकिन इसकी महिमा क्या है कि इसकी प्राण प्रतिष्ठा भी नहीं करनी पड़ती। शालिग्राम शिला की प्राण प्रतिष्ठा करने की कोई आवश्यकता नहीं है, कि साक्षात श्री कृष्ण है, ये परम भगवान श्री कृष्ण है। तो इस तरह से कई लीलाओं में देखते हैं, जैसे वृंदा देवी ने शाप दिया तो भगवान यहाँ शिला के रूप में प्रकट हुए। तो ये सब तो लीला है, लेकिन शिला के रूप में भी जो है भगवान कृष्ण जो है वो उनकी स्थिति दिव्य बनी रहती है, और अनेकों भक्त, अनेक भक्त जो है भगवान के शुद्ध भक्त जो है वो शिलाओं की सेवा पूजा करते हैं आज भी। तो ये शिलाएं सक्षम होती है जो स्वयं परम भगवान श्री कृष्ण है, कि पद की आत्माओं को भव सागर से पार करा सके और अपनी सेवा में लगा सके। तो इस प्रकार यहाँ पर जैसे बताया गया, सारथी के रूप में है परम भगवान श्री कृष्ण। सारथी कोई बहुत अच्छा शब्द नहीं माना जाता, भौतिक जगत में बहुत अच्छा कार्य नहीं माना जाता। सारथी का मतलब होता है ड्राइवर होता है, ड्राइवर का पोस्ट जो है, ड्राइवर की पोजीशन समाज में बहुत हाई क्लास में मानी जाती है, लेकिन परम भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर सारथी बन के बैठे हैं अर्जुन के साथ, और भगवान की महिमा सारथी के रूप में हमेशा बढ़ी है और आज भी बढ़ रही है पार्थ सारथी के रूप में। इसे राधा पार्थ सारथी विराजमान है, श्रील प्रभुपाद जी ने स्वयं को स्थापित किया है दिल्ली में। तो पार्थ सारथी की महिमा तो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, वो कभी च्युत नहीं होते हैं, हालांकि वो उनके चालक बन गए हैं, ड्राइवर बन गए हैं, लेकिन फिर भी वो अपनी स्थिति से कभी च्युत नहीं होते हैं। और सारथी के रूप में देवी देवता गण भी जो है, जब सारथी के रूप में परम भगवान श्री कृष्ण रथ को चला रहे हैं और जब अर्जुन पीछे बैठे हैं, तो देवता गण जो है पुष्पों की वर्षा करते हैं आकाश से और भगवान का स्वागत करते हैं। तो ऐसा तो कभी होता नहीं है, इन भौतिक जगत में कभी देखा नहीं है कि अगर कोई ड्राइवर की नौकरी कर रहा है तो ऊपर से कोई फूलों की वर्षा होगी, होता है क्या? कभी नहीं होता है। लेकिन परम भगवान श्री कृष्ण जब रथ भी चला रहे हैं तो उनके ऊपर पुष्पों की वर्षा हो रही है, ये भगवान की महिमा है। हाँ। और इस समय भगवान जो है, ऐसे में भगवान बहुत सुंदर दिखाई पड़ते हैं। इसी रूप को, इसी सुंदर रूप को विश्व पितामह देखना चाहते हैं, उनके इस रूप को देखना चाहते हैं कि किस तरह वो सारथी के रूप में बैठे हैं युद्ध भूमि में और रथ को हाँक रहे हैं, ऐसे सुंदर रूह का दर्शन करना चाहते हैं, जब वहां पर उस पृथ्वी की धूली जो है परम भगवान श्री कृष्ण के शरीर में लग रही है, उनके केश में लग रही है, और पीतांबर वस्त्र धारण किया है परम भगवान ने, परम भगवान श्री कृष्ण ने, भगवान कितने सुंदर दिखाई दे रहे हैं, विश्व पितामह सुंदरता को निहार रहे हैं युद्ध भूमि में और वीर रस का स्वादन कर रहे हैं। तो इस तरह से परम भगवान श्री कृष्ण हमेशा अच्युत हैं। ऐसे कई लीलाएं हैं, जरासंध के साथ जब युद्ध हुआ परम भगवान श्री कृष्ण का, तो उस समय भी जरासंध के साथ युद्ध करते हुए भगवान रणभूमि को छोड़ के भाग गए, भाग ही गए थे वास्तव में, रणभूमि को छोड़ के भाग गए थे, लेकिन उनका नाम क्या पड़ा, रणछोड़ राय। आज भी गुजरात में मंदिर है रणछोड़ राय के नाम से, और वहाँ पे उनकी पूजा सेवा होती है, उनके सामने सब गुणगान करते हैं भगवान। तो ऐसा तो कभी होता नहीं कि युद्ध भूमि में कोई छोड़ के भागे और उसका गौरव बढ़े, उसकी महिमा बढ़े, उसको परमवीर चक्र दिया जाएगा क्योंकि आज युद्ध भूमि छोड़ के भागे, ऐसा होता है कभी नहीं होता है। लेकिन रणछोड़ राय का गौरव तो, उनकी महिमा तो बढ़ती जाती है, और अनेक भक्त जो है, अनेक भक्त जाकर गुजरात में आज भी इस मंदिर में जाके उनकी पूजा सेवा करते हैं। तो ये भगवान है। तो इसी तरह से परम भगवान, देखिए अभी जन्माष्टमी आ रही है, जन्माष्टमी मनाई जा रही है, जन्माष्टमी हम लोग भी अपना जन्मदिन मनाते हैं कि नहीं, कितने साल मनाते हैं, 40 साल, 50 साल, लेकिन 70-80 साल के बाद कोई अपना जन्मदिन नहीं मनाना चाहता है कि नहीं। बहुत ज़्यादा वृद्ध व्यक्ति हो, 80-90 साल का, उसका जन्मदिन मनाया जाए तो ये शोभा नहीं देता है, स्वयं ही वो मना करता है कि नहीं, मैं इतना वृद्ध हो चुका, अब मेरा क्या जन्मदिन मना रहा हूँ, बच्चों का मना नहीं। लेकिन परम भगवान श्री कृष्ण को प्रकट हुए 5,000 साल से ऊपर हो चुके हैं, और आज भी जो हम जन्माष्टमी मना रहे हैं, और जन्माष्टमी मनाने का जो गौरव है, जन्माष्टमी मनाने की जो संख्या है भक्तों की, वो आज कितनी बढ़ गई है। आज पूरे पृथ्वी में श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से आज पूरे पृथ्वी में प्रत्येक शहर में, प्रत्येक नगर में आज जन्माष्टमी मनाई जा रही है। तो देखिए भगवान कभी चुप नहीं होते हैं, उनके जन्मदिन भी है तो वो भी कितने उत्साह से भक्त लोग मनाते हैं और इंतजार करते हैं कब आएगा जन्माष्टमी का दिन, कब हम लोग जन्माष्टमी मनाएंगे, और उसकी कितनी सारी व्यवस्था होती है ना। तो ये भगवान का गौरव है, भगवान कभी चुप नहीं होते हैं और भगवान की लीलाएं जो है वो कभी चुप नहीं होते हैं। और इस समाज में हम देखते हैं कि जो नेतागण हैं, वो नेतागण जो है अपने पद को बनाए रखने के लिए क्या क्या योजना बनाते हैं, कितनी राजनीति करनी पड़ती है राजनीतिज्ञों को, नेताओं को पद हासिल करने के लिए, और पद हासिल करने पर उसको संभाल के रखने के लिए कितना धन संग्रह वो करते हैं, और कितना वो वोट बटोरते हैं लोगों से धन देकर, क्या क्या नहीं करना पड़ता है इस पद को बनाए रखने के लिए। लेकिन भगवान को अपना पद बनाए रखने के लिए, कि वो परम भगवान श्री कृष्ण है, ये पद बनाए रखने के लिए उनको किसी के वोट की आवश्यकता नहीं है। ये नहीं कि इस्कॉन वाले जब वोट डालेंगे तभी वो परम भगवान श्री कृष्ण है, वो नहीं भी डालेंगे इस्कॉन के भक्त नहीं भी डालेंगे वोट तभी वो परम भगवान श्री कृष्ण है कि नहीं। या कोई भी भक्त ना भी डाले वोट, भक्त तो हमेशा वोट डालता है भगवान के लिए, तो कोई संशय नहीं है, लेकिन कहने का अर्थ यह है कि भक्त जो है हमेशा भगवान का गुणगान करते हैं, और इस कारण से भी नहीं गुणगान करते हैं भक्त तो भगवान के, जो ब्रजवासी हैं वो भगवान का गुणगान इस कारण से भी नहीं करते हैं कि कृष्ण परम भगवान है, बताइए क्यों? क्योंकि जो ब्रजवासी हैं उनका विशेष प्रेम है भगवान से, उनका संबंध भगवान से प्रेम का ही संबंध है, उनको इस बात का भी ज्ञात नहीं है, ये भगवत का, भगवता का ऐश्वर्य, भगवत ऐश्वर्य का ध्यान भी जो है ब्रजवासियों को है नहीं, वो जानना भी नहीं चाहते हैं कि कृष्ण कौन है, क्यों? क्योंकि वो कृष्ण की केवल सेवा करना चाहते हैं, कृष्ण से केवल प्रेम करना चाहते हैं, ये उनकी महिमा है। तो इस तरह से परम भगवान श्री कृष्ण जो है वो अगर उनके पद के बारे में जाने या ना जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है भक्तों को, भक्त तो भगवान की सेवा करना चाहते हैं। आज आप सब भक्तों को पता भी चल जाए, मान लीजिए कि आपने जो शास्त्र पढ़े थे वो सारे गलत है, वास्तव में तो परम भगवान और कोई है, लेकिन शायद हम में से कुछ ही भक्त होंगे जो शायद कृष्ण को छोड़ के जाना चाहें, है कि नहीं, सच बताइए। तो इसका मतलब केवल ये कारण नहीं है, हम इसलिए आंदोलन में जुड़े हुए नहीं हैं कि कृष्ण परम भगवान है इसलिए उनकी सेवा करें, ये तो केवल एक सुपर एक्सटर्नल रीजन है, ये केवल एक गौण कारण है। विशेष कारण क्या है कि भक्त का, एक जीव का भगवान से शाश्वत संबंध है और ये संबंध कभी च्युत नहीं होता। ये संबंध जो है क्या है, सनातन है। भगवान भगवद गीता बता रहे मम ही वांश जीव लोके जीव भूत सनातन। ये जीव जीवात्मा के सनातन अंश है तो च्युत होने का कोई मतलब ही नहीं है। तो ये भगवान के जो संबंध है वो भी शाश्वत संबंध है, वो भी कभी च्युत नहीं होता है। इस संसार में अगर कोई कार्य ना करे या परिणाम ना दे, रिजल्ट ना दे, कई हमारे यहाँ भक्त हैं जो कई कंपनी से जॉब कर रहे होंगे, वह रिजल्ट प्रोड्यूस करना पड़ता है कि नहीं। खासकर अगर मल्टी नेशनल कंपनी से भी काम कर रहा है तो वहाँ पर तो टारगेट ओरिएंटेड होता है सारे जॉब, नहीं रिजल्ट ओरिएंटेड होता है। तो बिना रिजल्ट के तो कोई रखेगा ही नहीं किसी को भी, है ना। तो इस तरह से रिजल्ट बेस्ड नहीं है कि मतलब कहने का मतलब कृष्णा कॉन्शियसनेस कोई रिजल्ट बेस्ड नहीं है। ये नहीं देखा जा रहा है कि कृष्ण कितने कार्य किए हैं, कितने कार्य ने किए हैं, कितने रिजल्ट प्रोड्यूस किए हैं, है ना। तो इसलिए कृष्ण सदैव परम भगवान श्री कृष्ण बने रहते हैं, भले वो कार्य करें या ना कार्य करें, हालांकि सब कुछ भगवान ही कर रहे हैं। तो इस प्रकार परम भगवान की स्थिति हमेशा बनी रहती है। और दूसरा ये बताया गया है कि दसवें अध्याय के तीसरे श्लोक में बड़ी अच्छी बात बताई गई है। भगवान बता रहे हैं जो मुझे अजन्मा अनादि समस्त लोगों के स्वामी के रूप में जानता है, मनुष्य में केवल वही मोह रहित और समस्त पापों से मुक्त है। अजन्मा और अनादि, जिसका कोई जन्म नहीं हुआ, जिसकी कोई शुरुआत नहीं है, वो है परम भगवान श्री कृष्ण। वो सभी पापों से मुक्त है, वो मोह रहित है, वो मूढ़ नहीं है, वो मूर्ख नहीं है, भगवान कह रहे हैं, क्योंकि वो सभी पापों से मुक्त है। कहने का अर्थ यह है कि कृष्ण को अगर कोई परम भगवान के रूप में जान रहा है, उस बात की वो अनुभूति कर रहा है कि परम भगवान से कोई ऊंचा नहीं है, असम ऊर्ध्वम यानी उनके समान कोई नहीं है, उनसे ऊंचा कोई नहीं है, ये तभी हो सकता है जब कोई समस्त प्रकार के पापों से मुक्त हो। वो मोह रहित है, वो जानता है कि भगवान अनादि है और भगवान जो है अजन्मा है, उनकी कोई शुरुआत नहीं है, उनका कोई संसार में कोई जन्म नहीं है। तो इस प्रकार जो है भगवान हमेशा अच्युत बने रहते हैं। भगवान कृष्ण जो है माता यशोदा के गोद में सदैव और सोते भी रहे और कुछ भी ना करें, और कोई कहे कि अरे ये तो सो रहे हैं, ये तो कुछ कर ही नहीं रहे, सोते ही रह रहे हैं, सोते ही जा रहे हैं, है ना। तो ये कृष्ण परम भगवान कैसे, तो भगवान सोते भी रहे, अगर कुछ करना भी ना हो उनको, माता यशोदा की गोद में सोते भी रहे सदैव, तभी वो परम भगवान श्री कृष्ण। कुछ करने की उनको आवश्यकता नहीं है, कुछ दिखाने की उनको आवश्यकता नहीं है, कि ये संसार तो पूरा बनावटी संसार है और आज के समय में तो सब कुछ बनावटी हो गया है। सब कुछ दिखाना पड़ता है, सब कुछ बताना पड़ता है, नहीं तो कोई आपको कुछ मानेगा नहीं। हाँ, लेकिन भगवान के साथ ऐसा नहीं है। भगवान को कुछ दिखाने की आवश्यकता नहीं है, केवल भक्तों को आनंद प्रदान करने के लिए संसार में, इस पृथ्वी में आते हैं। हिरण्यकश्यपु ने कितनी तपस्या की, घोर तपस्या की हिरण्यकश्यपु ने। क्या बनना चाहते थे हिरण्यकश्यपु? भगवान बनना चाह रहे, भगवान विष्णु से दुश्मनी मोल ले ली उसने, और भगवान विष्णु का पद जो है वो गिराकर वो अपने को भगवान घोषित कर रहा था, इस प्रकार का भाव था उसका। लेकिन क्योंकि हिरण्यकश्यपु के पाप में खड़ा भर गया था, इसे वो कभी समझ नहीं पाया कि परम भगवान कृष्ण कौन है, एक लीला है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि भगवान जो है कभी भी च्युत नहीं होते हैं, कोई कितनी भी तपस्या करे, घोर तपस्या भी करे। हिरण्यकश्यपु ने 36,000 साल तपस्या की थी, अपने पंजों के बल पर खड़े होकर, हाथ खड़ा करके ऊपर, वो 36,000 साल खड़ा रहा वैसे एक ही जगह पर बिना जल पिए। एकादशी के दिन हम निर्मल करते हैं, लेकिन हिरण्यकश्यपु ने तो 36,000 साल तपस्या की, 100 दिव्य वर्ष देवताओं में, है ना, लेकिन फिर भी वो भगवान नहीं बन सका। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि कई लोग जो है भगवान बनने का प्रयास करते हैं। पौंड्रक नाम का एक था, असुर था, जो द्वारका में था और चुनौती देने लगा, कि वो कहने लगा कि ये जो द्वारकाधीश है असली नहीं है, मैं हूँ असली द्वारकाधीश। उसने भी अपने धारण कर लिए शंकर चक्र गदापत नकली। तो वो चुनौती देने लगा, और संदेश भिजवा, तो चिट्ठी भिजवाई पौंड्रक ने, बोला कि अब आपका समय पूरा हो गया है, आप नकली हो, मैं असली हूँ, मैं हूँ असली भगवान कृष्ण और मैं हूँ द्वारकाधीश। तो सबको त्याग दो, इसलिए अपना पद त्याग दो, मैं हूं असली द्वारकाधीश। तो भगवान ने संदेश भिजवाया, ठीक है मैं सबको त्यागने के लिए तैयार हूं, सबसे पहले मैं अपना सुदर्शन चक्र त्यागूंगा तुम्हारे ऊपर। और सुदर्शन चक्र त्यागने के बाद क्या होगा, तुम्हें शरण लेनी पड़ेगी इसकी, कुत्तों की और सियारों की शरण लेनी पड़ेगी तुम्हें। तो कहने का अर्थ ये है कि जो अपने आप को भगवान घोषित करते हैं, जो अपने आप को बताते हैं कि मैं ही भगवान हूँ या मैंने भगवान का पद ले लिया है, तो उन लोगों की हालत ये होती है कि उनको कुत्तों का और सियारों का शरण लेना पड़ता है, उनका अगला जन्म जो है बहुत ही खराब है। तो इस प्रकार यहाँ पे पार्थ सारथी यानी सारथी परम भगवान श्री कृष्ण है, और वो कभी चूकते नहीं है भक्तों की सेवा करने में, भक्तों की सेवा करने में कभी चूक नहीं होते हैं, और अपने कर्तव्य को पूरा करने में कभी चूक नहीं होते हैं, और अपने भक्तों से प्रेम करने में कभी चूक नहीं होते हैं। तो ये सब अच्युत का अर्थ निकलता है। तो एक बार एक सर्प था जिसका नाम था अश्वसेन। ये जो सर्प है वास्तव में अर्जुन को मारना चाह रहा था, और इसने क्या किया, कर्ण के तस्कर में प्रवेश किया। तस्कर जानते ना क्या कहते, तस्कर तो डाकू कहते हैं, तर्कस था उनके। तो उस तर्कस में जो है वो सर प्रवेश कर गया, और कर्ण ने सोचा कि कोई बाण है, तो उस बाण को चला दिया, मतलब सर को चला दिया बाण समझकर अर्जुन के ऊपर, अर्जुन का गर्दन उड़ाने के लिए। भगवान कृष्ण समझ गए कि ये सर जो है अगर लग जाएगा, आक्रमण करेगा तो फिर खत्म हो जाएगा। तो भगवान ने क्या किया, रथ को जो है अपने पांव से नीचे कर दिया, और वो बाण जो है फिर अर्जुन के मुकुट पर लगा, और मुकुट जो है विषाग्नि के द्वारा जो है सर्प की विषाग्नि के द्वारा जल के वहीं भस्म हो गया। तो अर्जुन की रक्षा भगवान ने बहुत जगह की है, महाभारत के युद्ध में कर्ण के साथ युद्ध करते हुए, भीष्म पितामह के साथ युद्ध करते हुए भी बिल्कुल ऐसा ही किया। जब भीष्म पितामह ने वरण ले लिया कि आज तो अर्जुन को मैं मार के ही छोड़ूंगा, और बाणों की बरसात कर दी, भीष्म पितामह ने आक्रमण किया, अति तेजी से आक्रमण किया। लेकिन जब देखा कि अब अर्जुन जो है अब कुछ नहीं कर पा रहे हैं, और उनका रथ भी टूट गया है, रथ का पहिया भी टूट गया है, और अर्जुन नीचे आके गिर गए हैं रथ से, तो फिर भीष्म पितामह आप पर अर्जुन को मार ही देते कि परम भगवान श्री कृष्ण की रक्षा से रथ का पहिया उठा के भीष्म पितामह की ओर भागे, अपने वचन को तोड़ा, अपने वचन को भंग किया कि युद्ध भूमि में मैं किसी के ऊपर अस्त्र नहीं उठाऊंगा, लेकिन अपने भक्त के लिए, अपनी भक्त की रक्षा के लिए परम भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया, रथ के पहिये को उठा लिया। कौन त्या प्रति जाना ही नामे भक्त अपनिषदि, हे कुंत्र पुत्र तुम घोषणा करो कि मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता है, कि जाकर मेरी बात में मैं तो मर्यादा भंग कर सकता हूँ, लेकिन अगर तुम घोषणा करोगे तो मैं मर्यादा को भंग नहीं करूँगा। तो इस तरह से भीष्म पितामह के साथ जब युद्ध हुआ, तभी अर्जुन की भगवान रक्षा की। तो ये सारथी का कर्तव्य है, क्या कर्तव्य है, कि वो अपने मालिक की रक्षा करे युद्ध में। सारथी केवल एक ड्राइवर नहीं होता युद्ध में, सारथी जो है अपने आप में बहुत बड़ा योद्धा होता है। ये गाड़ी नंबर 6559 ये किसी के घर के सामने खड़ी है, हटा ली। तो इस तरह से देवताओं ने पुष्प वर्षा की, ये देखते हुए कि भगवान ने जो है एक अच्छे सारथी का कार्य किया है, और इस तरह से भगवान के सबने प्रशंसा की। अब यहां पर देखिए एक बात और भाव निकल रहा है श्लोक में, कि अर्जुन ये विचार कर रहे हैं कि मैं युद्ध करूं या नहीं करूं, मेरा युद्ध करना सही होगा या नहीं सही होगा, क्योंकि सामने कौन खड़े हैं, भीष्म पितामह खड़े हैं, द्रोणाचार्य खड़े हैं जो उनके गुरु तुल्य हैं और गुरु भी हैं, तो कैसे इनके साथ युद्ध किया जाए, या दुर्योधन के साथ भी क्यों युद्ध किया जाए, इन रिश्तेदारों के साथ सारे मेरे रिश्तेदार खड़े हैं सामने, इनके साथ युद्ध करने का क्या लाभ, और दुर्योधन को मैं मार भी देता हूँ युद्ध भूमि में इन सब कौरवों को, तो राज्य भी मिलेगा तो उससे क्या सुख मिलेगा। तो इस तरह से अर्जुन विचार कर रहे हैं कि युद्ध करो या नहीं करो, क्योंकि दुर्योधन ने क्या किया, उसने अधर्म के मार्ग को अपनाया था, और छल से जो है इस तरह से कौरवों को वनवास में भेजा था और निकुट नीति के द्वारा, तो दुर्योधन ने अधर्म का मार्ग भी अपनाया। और इस प्रकार से अर्जुन भी जानना चाह रहे थे कि क्या कारण है ये इस तरह से युद्ध करने के लिए तुल्य है, मतलब तुले हुए हैं, युद्ध क्यों करना चाह रहे हैं, इतने सारे योद्धा यहाँ खड़े हैं, इस युद्ध का क्या लाभ है, क्या आवश्यकता है इस युद्ध की, महाभारत के युद्ध की क्या आवश्यकता है, इससे बेकार का युद्ध है, अगर मैं जीत भी गया तो राज्य किसके साथ, उसका सुख राज्य का सुख किसके साथ होगा, तो फायदा क्या है, लाभ क्या है इतने सारे योद्धाओं को अपने ही रिश्तेदारों को मारने का। तो इस तरह से जो है अपने यहाँ पर विचार कर रहे हैं क्या किया जाए क्या नहीं किया जाए। किंकर का मतलब होता है किंकर, किंकर का मतलब होता है कि मैं क्या करूं, किंकर का मतलब क्या है, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं का मतलब है कि आप मुझे बताइए कि मैं क्या करूं, कि अर्जुन ने परम भगवान श्री कृष्ण की शरण ली है, अब अर्जुन चाहते हैं कि परम भगवान श्री कृष्ण को बताए कि वो क्या करे, और अर्जुन का भाव ये भी है जो वो कह रहे हैं कि मैं युद्ध करूं या ना करूं, किसको मारो किसको ना मारो, आप स्पष्ट बताइए मैं किसको मारू, तो आप बताइए, मैं आपकी शरण में आया हूं, आप बताइए मैं किसको मारू। तो इस तरह से जो है अर्जुन इस भाव को व्यक्त कर रहे हैं। और यहां पर 18वें अध्याय में देखते हैं श्लोक संख्या 63 में भगवान ने कहा है, हाँ भगवान ने कहा अर्जुन को कि मैंने आपको सब कुछ बता दिया, लेकिन यथा इच्छा थी तथा करो, अब आपकी जो इच्छा है वो आप करो, लड़ना है लड़ो, नहीं लड़ना है मत लड़ो, जब करना है जब करो, मंदिर जाना है जाओ, आपकी इच्छा है, हमने प्रचार आपको तो कर ही दिया है, भगवत गीता भी आपको दे दी है आपने, अब आपके ऊपर है आप प्रसाद लेना चाहते हैं नहीं। तो यहां पर हम देखते हैं अर्जुन कह रहे हैं कि करिष्ये वचनं तव, अब आप जो कहेंगे मैं करने के लिए तैयार हूं। कहने का क्या अर्थ है, कहने का अर्थ यह है कि भगवान ने जीव को स्वतंत्रता दी है, जो माइन्यूट इंडिपेंडेंस या आंशिक स्वतंत्रता दी है भगवान ने जीव को, जीव का कर्तव्य क्या है, अर्जुन ये दिखा रहे हैं कि जब भगवान ऐसा कह रहे हैं तो इसका अर्थ यही है कि हम उनके आदेशानुसार चलें, उनके उपदेश को स्वीकार करें, उनका उपदेश ये है क्या, उनका उपदेश ये है कि हम उनकी सेवा करें, है कि नहीं। तो ये वास्तव में यही महामंत्र जप करने का भी हमारा भाव होता है, हम परम भगवान श्री कृष्ण से उनकी लादनी शक्ति से श्रीमती राधारानी से प्रार्थना करते हैं कि हम आपकी कैसे सेवा कर सकते हैं, है कि नहीं, कि हम आपकी सेवा करना चाहते हैं, मैं आपकी किस तरह से सेवा कर सकता हूँ, किस तरह की सेवा से मैं आपको प्रसन्न कर सकता हूँ, यही महामंत्र जप करने का आशय होता है। और यहाँ पे भी अर्जुन जो युद्ध करने के लिए तैयार होंगे युद्ध भूमि में, उनका भी उद्देश्य यही है क्या, कि वो भगवान की प्रसन्नता के लिए युद्ध करना चाहते, और उनका कोई उद्देश्य नहीं है, और उनका कोई आशय नहीं है। तो कई बार भक्ति में भी ऐसा ही होता है कि भक्ति मार्ग में जब आते हैं हम लोग तो कई ऐसे कार्य होते हैं जो हमें पसंद नहीं होते, है कि नहीं। कई बार कोई अगर भक्त प्रचार कर सकता, अगर उसको प्रसाद बनाने में लगा दिया जाए या बर्तन धोने में लगा दिया जाए तो कैसा लगेगा उसको, है, लेकिन सेवा तो सेवा है। तो इस प्रकार कई तरीके से हमारी परीक्षा होती है, भगवान परीक्षा लेते हैं हमें, किसी ना किसी सेवा में, ऐसी सेवा में डालते हैं जहाँ हमारी परीक्षा होती है, गुरु हमारी परीक्षा लेते हैं। तो शिष्य अगर समर्पित है, अगर वो आज्ञा का पालन करता है और स्वीकार कर लेता है कि जो गुरु की बात है वो सही है, तो फिर धीरे धीरे वो एहसास करता है कि गुरु ने जो आज्ञा दी थी मुझे वो मेरी भलाई के लिए ही दी थी। क्योंकि देखिए प्रारंभ में जब डॉक्टर दवाई देता है तो हो सकता है दवाई पेशेंट को अच्छी ना लगे, दवाई कड़वी होगी, लेकिन दवाई लेके जब स्वस्थ हो जाता है मरीज तो उस दवाई का महत्व समझता है। इसी तरह से एक शिष्य जो है प्रारंभ में उसको जप करना बहुत खराब लगता है, मतलब काम फंसने लगता है, 16 माला जप करना पड़ेगा, रोज करना पड़ेगा, जीवन के अंतकाल तक करना पड़ेगा, ये तो समस्या में फंस गया, हमने सोचा ही नहीं था। तो कई लोग, कई भक्त जो है इस कारण से पीछे हट जाते हैं, वो वापस अपने संसार में चले जाते हैं, बोलते नहीं नहीं इतना हम लोग नहीं करने सकते, टेंशन ये तो ऑलरेडी हमारा तो टेंशन है, अब वहां जाके मंदिर में जाके टेंशन ले लो कि दो घंटा जब भी करना पड़ेगा, सुबह 4:30 बजे मंगल आरती में भी आना पड़ेगा, भक्तों का संग करना पड़ेगा, ये नियम है वो नियम है, 4 नियम का पालन करना पड़ेगा, हमसे इधर नहीं होगा। तो इसलिए कई लोग जो है इसी में छट जाते हैं। इसलिए हमारे संस्था में, हमारे केंद्रों में आप देखेंगे इतनी भीड़ नजर नहीं आती, इतनी तादाद में लोग नहीं आते हैं। कारण क्या है? कई लोग नियम सुन के ही जो है उसी में घायल हो जाते हैं, क्योंकि लोगों को लगता है कि हाँ यहाँ पर इतना कुछ सस्ता नहीं मिल रहा है, कोई आसानी से नहीं मिल रहा है, बहुत कठिन लगता है भगवान की भक्ति प्राप्त करना, तो लोग फिर दूर हट जाते हैं। लेकिन प्रभुपाद जी अमेरिका भी गए थे, प्रभुपाद ने समझौता नहीं किया, उनसे कहा गया, मिश्रा जी जो थे वहां पर योगा के टीचर थे, उन्होंने कहा कि आप यहाँ अमेरिका में आए हैं, आपको यहाँ पर अमेरिकन कल्चर को स्वीकार करना चाहिए, अमेरिकन लाइफस्टाइल को स्वीकार करना चाहिए, फोर्क नाइफ को अपनाना चाहिए, सूट पहनना चाहिए, आप ये सब क्या स्वामी जी बने हुए हैं, कोई आपकी बात नहीं सुनेगा। प्रभुपाद ने कहा कि मैं समझौता नहीं, जगन्नाथ बल्लभ सुभद्रा महारानी की नहीं, प्रभुपाद ने कहा कि मैं समझौता नहीं करूंगा। प्रभुपाद ने क्या बोला? मैं समझौता नहीं करूंगा, अगर ये नहीं सुनेंगे तो मैं वापस अपने देश चले जाऊंगा। लेकिन प्रभुपाद ने कहा मैं समझौता नहीं, प्रभुपाद ने समझौता नहीं किया। इसे आप देखिए, जो भक्त वास्तव में गंभीर है भक्ति मार्ग में, जो भगवान की सेवा प्राप्त करना चाहते हैं, उन्होंने श्रील प्रभुपाद जी को हृदय से स्वीकार किया। तो इस तरह से कई तरह की परीक्षाएं होती हैं जो भगवान हमें देंगे, उन परीक्षाओं से हमें गुजरना पड़ेगा। यहां पर हम देख रहे हैं कि प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिख रहे हैं कि अर्जुन ने भगवान को वास्तव में एक तरह से आज्ञा दी थी, क्योंकि सखा है ना, अर्जुन की सखा है कृष्ण, और मित्र होने के नाते क्योंकि मित्र भी हैं और साथ सारथी के रूप में बैठे हैं, तो अर्जुन को आज्ञा दे रहे हैं वास्तव में कि आप जो है सेनाओं के बीच में ले जाइए, इस युद्ध भूमि के बीच में ले जाइए। तो भगवान आज्ञा स्वीकार करते हैं उन भक्तों से जिनके हृदय में प्रेम है भगवान के लिए, हमसे नहीं। हाँ, हम भी सोचेंगे, हम भी मंदिर जाएंगे और जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी को हम भी आज्ञा देंगे आज, है ना, चलिए आज आप हमारा रथ खींचिए, आज हम हमारा रथ खींचिए, हम आपका रथ खींचते हैं हर साल जगन्नाथ रथ यात्रा जब होती है, आज हम हमारा रथ खींचिए, बाल खड़ी खड़ी है। तो क्या सोचते हैं जगन्नाथ जी करेंगे ऐसा? जगन्नाथ जी नहीं करेंगे। तो क्यों? क्योंकि हमारे हृदय में अभी भी संसार के लिए आसक्ति है, क्योंकि हम संसार में अभी भी रहना चाहते हैं, हमारे अंदर अभी भी निष्काम भाव है नहीं, अयुद्ध की भाव नहीं है, इस कारण से जो है भगवान जो है हमारी बात को सुनेंगे नहीं। फिर हमारी बात कौन सुनेगा? गुरु हमारी बात सुने, हमारी प्रार्थनाएं कौन सुनता है वास्तव में? हमारे गुरु सुनते हैं, भक्त सुनते हैं, वैष्णव सुनते हैं, भगवान थोड़ा सुनते हैं हमारी प्रार्थना को, भगवान सुनते हैं गुरु परंपरा के माध्यम से, कि गुरु परंपरा हमारी प्रार्थनाओं को भगवान तक ले जाते हैं। फिर सीधे कहां प्रार्थना हमारी सुनेंगे? जब तक हमारे हृदय में प्रेम नहीं है, हृदय में प्रेम की आवश्यकता है। तो इसलिए अर्जुन के हृदय में प्रेम है, सखा भाव है, उनका कृष्ण के साथ सख्यरस है, इसलिए अर्जुन की बात को तुरंत सुन रहे हैं और कोई विरोध नहीं कर रहे हैं। तुम जानते नहीं कि मैं परम भगवान हूं, है ना, तीनों लोगों का स्वामी हूं, तुम्हें देखे बात करना चाहिए, ड्राइवर बन गया तो क्या है ना, अपनी हैसियत के हिसाब से बात करो। भगवान ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा, जैसे भगवान को आज्ञा दी, क्योंकि भगवान में इस प्रकार का अहंकार नहीं है, भगवान में कोई मिथ्या अहंकार नहीं है। जिस तरह से भक्त भगवान की सेवा करना चाहता है, उसी तरह से भगवान भी जहां भक्त की सेवा करना चाहता है। देखिए गुंडीचा मंदिर माधव में श्री चैतन्य महाप्रभु अनेक भक्तों के साथ वहां पर क्या कर रहे हैं? मंदिर की सफाई कर रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु स्वयं पर भगवान श्री कृष्ण है, जो सारथी बने आज वो मंदिर की सफाई कर रहे हैं, बताइए, धूल हटा रहे हैं, और फिर उसके बाद महाप्रभु पहुंचा भी मार रहे हैं, श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं ऐसा कर रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में जो भक्त आते थे प्रत्येक वर्ष, लगभग 200 भक्त बंगाल से आते थे, शिवानंद सिंह को लेकर आते थे, और कई भक्त आते थे अनेक इलाकों से, श्री चैतन्य महाप्रभु सबकी रहने की व्यवस्था करते थे, उनकी प्रसाद की व्यवस्था करते थे, और भक्तों को यहाँ तक प्रसाद पर चैतन्य महाप्रभु सब कुछ करते थे। तो कहने का अर्थ यह है कि चेतने महाप्रभु परम भगवान श्री कृष्ण है, लेकिन उनका प्रेम क्योंकि भक्तों से है, इसे चेतने महाप्रभु ने भक्तों की सेवा की। चेतने महाप्रभु खैर भक्त के रूप में आए, लेकिन है तो परम भगवान कृष्ण। तो भगवान भक्तों से इतना प्रेम करते हैं, भगवान भक्तों से इतना प्रेम करते हैं कि स्वयं भक्त बनना चाहते हैं। भक्तों से इतना प्रेम है कि स्वयं को भक्त बनना चाहते हैं, इसलिए वो श्री चैतन्य महाप्रभु रूप में आ रहे हैं। हालांकि बहुत सारे कारण हैं और चैतन्य महाप्रभु आने के, तो कहने का अर्थ यह है कि हम लोग भाव को पकड़े कि भाव क्या है। भगवान के जो भगवान जो है अपने भक्तों के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है, कुछ भी करने के लिए। ध्रुव महाराज जब तपस्या कर रहे थे मधुबन में और जो छठा महीना बीत गया, तो भगवान जो है भागवत में लिखा है कि भगवान ध्रुव महाराज का दर्शन करने के लिए गए। क्या लिखा है? भगवान ध्रुव महाराज का दर्शन करने के लिए गए, दर्शन देने के लिए नहीं गए, ध्रुव महाराज का दर्शन करने के लिए। उनकी भक्ति देखकर, उनकी तपस्या देखकर कि कैसे 6 महीने के अंदर उन्होंने भगवान को प्रसन्न कर लिया है, और भगवान को दर्शन उनका दर्शन करने के लिए ध्रुव महाराज के पास गए। तो ये होता है जब प्रेम होता है, जब भाव जागृत हो जाता है, जब सुशुद्ध भावना कृष्ण भावना जाग जाती है, कृष्ण के लिए भगवान के लिए सुशुद्ध प्रेम जाग जाता है, तो भगवान फिर आपके पीछे पीछे दौड़ते हैं, आपको छोड़ेंगे नहीं। फिर कृष्ण आप कितना भी कोशिश कर लीजिए आपको नहीं छोड़ेंगे। तो उस स्थिति में हम सबको पहुंचना है, समय लगेगा, कई वर्ष बीत सकते हैं, कई जन्म बीत सकते हैं, कई युग बीत सकते हैं, कई मन्वंतर बीत सकते हैं, लेकिन अगर हमारा प्रयास रहा हमेशा जारी रहा तो निश्चित रूप से हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करें, इसमें कोई संशय नहीं। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न है? सर्टिफिकेट की बात बता रहे, कोई प्रश्न है? मुझे याद नहीं है, लेकिन वृंदा देवी ने शाप किया। और कुछ सेवा किससे मांगते हैं? भगवान से तो मांगते हैं सेवा, लेकिन गुरु के माध्यम से, भक्तों के माध्यम से। तो गुरु परंपरा के माध्यम से हम भगवान से सेवा मांगते हैं। ठीक है, और कोई प्रश्न है? इसे महामंत्र का जब शुरू करते हैं उससे पहले हम लोग गुरु महाराज का प्रणाम मंत्र उच्चारण करते हैं, या दीक्षा नहीं हुई तो प्रभुपाद जी का करते हैं। तो जन्माष्टमी इस बार 10 अगस्त को है, तो आप सब उसमें आएंगे, भाग भी लीजिए, और हम सब सेवा स्वीकार करें। भगवान को प्रसन्न करने का तरीका है कि हाँ सेवा है कि नहीं? यहाँ पर देखिए परम भगवान श्री कृष्ण अर्जुन की सेवा करना चाह रहे हैं, और अर्जुन भी भगवान की सेवा करते हैं। तो सेवा के माध्यम से ही भगवान से संबंध जुड़ता है। अगर हम सेवा नहीं करते तो फिर भगवान से कभी संबंध नहीं जुड़े हमारे। और जन्माष्टमी साल में एक बार आती है, अपने जन्मदिन में तो हम कितने खर्चा करते हैं कि नहीं? आप देखेंगे कई लोग ऐसा ऐसा जन्मदिन, आप हैरान हो जाएंगे कि एक व्यापारी है जो आपके गुड़गांव में ही है, नाम नहीं बताएंगे उसका, क्योंकि वैसे भी आप उनके पास जाना भी चाहेंगे तो मिल नहीं पाएंगे वो मिलते नहीं थे आसान से। तो उन्होंने 5 या 8 दिन का, याद नहीं मुझे, 5 या 1 हफ्ते का शायद, लगभग 1 हफ्ते का समझ लीजिए, उन्होंने जन्मदिन मनाया अपना, और 100 करोड़ रुपए खर्च किया उन्होंने अपने जन्मदिन में। इसी गुड़गांव में रहते हैं आपके ऊपर तो कोई अपने जन्मदिन में 100 करोड़ खर्च करता है, या हमारी जैसे जो बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, वो अपने वाइफ के लिए, उनके वाइफ के जन्मदिन पर उन्होंने हवाई जहाज खरीद के लिया, जिसमें सभी दिल्ली इंडिया के या दिल्ली के जितने मंदिर हैं सबकी जन्माष्टमी मनाई जा सकती है कितने दुखी बात, हमारे लिए दुख है कि नहीं, वो लोग तो खुशी मना रहे हैं, हम लोग के लिए कितना दुख, कितने दुखी बात है कि सामान्य व्यक्ति के लिए, और वो जो व्यापारी है वो कोई यंग आदमी नहीं है, वो तो मृत्यु की तरफ बढ़ रहा है, यानी काफ़ी उम्र हो चुकी है, वो अपना जन्मदिन मना रहा है। जन्मदिन मना रहा है तो भगवान का ही मना रहा है, परम भगवान श्री कृष्ण का इन्हीं का ही है असली जन्मदिन, इन्हीं का ही जन्मदिन मनाना चाहिए देखा जाए तो, है कि नहीं, क्योंकि इनके जन्मदिन मनाने से हमें कोई फायदा होगा, हमें लाभ होगा, हमारा दोबारा संसार में जन्म नहीं होगा अगर हम जन्माष्टमी मनाते हैं, ये लाभ होगा। और फिर क्या होगा, फिर ये होगा कि इससे और लोगों को भी लाभ होगा, तो इसलिए हम सबको सेवा में जुड़ना है तन मन और धन से, जैसे भी संभव हो हमें जुड़ने का प्रयास करना चाहिए। बहुत सारी सेवाएं होंगी, आपको बताया जाएगा यहाँ के भक्तों के द्वारा कौन कौन सी सेवाएं हैं जन्माष्टमी से संबंधित, उन सभी सेवाओं में आपसे जुड़िए, है ना, और जन्माष्टमी के बारे में सबको बताइए और सब लोगों को जोड़िए, है कि नहीं। जन्माष्टमी सबकी सफलता का एक राज ये भी है, और एक मतलब अगर सक्सेसफुल है या सफलता मिल रही है जन्माष्टमी में, उसका एक लक्षण क्या है, उसका एक लक्षण ये भी है कि कितने लोग जन्माष्टमी में आपके मंदिर में आए भगवान का जन्मदिन मनाने के लिए, है कि नहीं। क्योंकि आपके अपने जन्मदिन में आप खुश होते हैं, या आपके घर में बिल्कुल भरा होता है, इतने सारे लोग आए, हजारों की तादाद में लोग आए आपके जन्मदिन मनाने के लिए, खुश होते नहीं खुश होते आप। इसी तरह से जन्माष्टमी के दिन अगर यहाँ पे लाखों की तादाद में लोग आएंगे भगवान के दर्शन करने के लिए, तो कितनी प्रसन्नता होगी, भगवान कितने प्रसन्न होंगे, कितने सारे जीव जो हैं आए यहाँ पर अपना उद्धार करेंगे। जो सेवा करना चाहते हैं वो अरुण शर्मा जी और रसिक केशव प्रभु, इनसे आप खड़े हो जाए, आप दिखाई नहीं दे रहे हैं, रसिक केशव प्रभु ये हैं और अरुण शर्मा जी कौन है, और सेवा में गए तो वो आएंगे, तो रसामृत प्रभु भी है, तो इनसे भी आप मिल सकते हैं सेवाओं में, तो आप सब सेवाओं में जुड़िए, है ना, कोई ना कोई सेवा तो सब कर ही सकते हैं यहाँ पर आकर। हरे कृष्ण। तो सर्टिफिकेट आज के प्रोग्राम में जो लेवल टू के भक्त हैं, जो लेवल टू कंप्लीट किया है, उनके ये सर्टिफिकेट हैं। नाम पढ़ दें, राम शरण दा, अरे थैंक यू, रसामृत, हाँ मैं दास बोल रही हूँ, प्रभु बोलो, उससे लिखा हुआ पढ़ रहा हूँ, प्रभु बोल रहा हूँ, ठीक है, राम शरण प्रभु, रसामृत प्रभु हमारे तो प्रभु ही है, तो लिखा सर्टिफिकेट में ऐसे लिखते हैं ना, सदा प्रेमानंद प्रभु। आज के प्रोग्राम बहुत अच्छा प्रोग्राम है, इसको अगर आप गंभीरता से लेंगे तो हमारा प्रचार बहुत तेजी से बढ़ सकता है। सौम्य कौशल्या देवी माता जी, सर्वपालक प्रभु, अनादि राधा देवी माता जी, वृष्णि पालक प्रभु, वृष्णि पालक नहीं आप दे देंगे, राधा किशोरी देवी माता जी, माधव किशोरी देवी माता जी, रितेश प्रभु, भक्त रितेश, ये अच्छा है कि दीक्षा से पहले भक्त होते हैं, दीक्षा के बाद दास। उसको भी कह लीजिए प्रमोशन, ये है विश्वेश्वरी माता जी, दीप्ति माता जी, योग्यता माता जी, हरिदास ठाकुर प्रभु, मंडली भद्र प्रभु, रसिक केशव प्रभु, हरे मुरलीधर गोपीनाथ प्रभु, हरे कृष्णा, बहुत बहुत आपका तो और भी कुछ आना क्या ध्यान दो
हरे कृष्णा। अभी आपको एक सूचना मैं दे रहा हूँ, पता नहीं वो सूचना से हमको तो बहुत दुख है, पर आप लोगों को भी पता नहीं दुख होगा कि नहीं होगा। हमारे एक बहुत ही उत्तम भक्त जिनको मैं बुला रहा हूँ यहाँ पर, अनुभव बलराम प्रभु और जानकी माता जी और उनके दोनों पुत्र यहाँ पर आए हैं। वो हमारे यहाँ से किसी कारणवश, पता नहीं क्या हमसे कुछ गलती हुई है क्या हुआ है, वो यहाँ से छोड़कर जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? बॉम्बे। मतलब वो कह रहे हैं कि यहाँ पर हमको बहुत अच्छा नहीं लग रहा है आप लोगों से उसमें, इसलिए वो छोड़ के जा रहे हैं। फिर भी मैं उनको यही मैं भगवान से प्रार्थना करूँगा कि जहाँ भी वो जा रहे हैं वो जाकर वहाँ भगवान की सेवा में लगें। तो भी जी उनसे हमारी बहुत चर्चा हुई, उन्होंने यही कहा कि मैं वहाँ जाकर भी सेवा करूँगा, वहाँ सेवा करता था और यहाँ भी सेवा करता था। पर मैं आपको इन लोगों के बारे में बताऊँ कि इन्होंने यहाँ आए हुए करीब 1.5 साल हुआ, 1.5 साल में इतनी सेवा की जिसका कोई हिसाब नहीं है। इन्होंने यहाँ पर नगर संकीर्तन की व्यवस्था की, नगर संकीर्तन किया, बहुत अच्छे ढंग से नगर संकीर्तन को निकाला, जो हमारा कभी कभी रह जाता था वो इन्होंने अच्छे ढंग से निकाला। जो जानकी माता जी, इन्होंने हमारे यहाँ के आश्रय ग्रुप जो चलता था जिसके बारे में भी ये सर्टिफिकेट मिले, वो आश्रय ग्रुप इन्होंने अच्छी तरह से चलाया अपना। तो मैं प्रार्थना करूँगा कि वो आज ये केक दोनों लोग मिलके काटे हैं, और तो भी इसे प्रार्थना करूँगा कि वो उनको एक गिफ्ट हमारे याद यहाँ के याद बारे में दें। हरे कृष्ण। हाँ बच्चों को लाइक नाम बच्चों का अपूर्व और प्रणव, अपूर्व और प्रणव, ये राधा पाशास्त्री से महाप्रसाद आया है, हम प्रभु जी से अनुरोध करेंगे कि वो इनको आशीर्वाद के रूप में महाप्रसाद प्रदान करें। हरि बोल। हरि बोल। बताइए आप लोग मिलकर देख हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। रुद्रा जय जय जय। ये राधा पाशास्त्री इनको याद दिलाते रहेंगे कि गुड़गांव में कुछ भक्त समाज था जिनके साथ ये थे, इसीलिए तोहफा इनको दिया प्रभु जी ने। हरे कृष्ण। के प्रसाद प्रसाद में वितरण हुआ। कीर्तन करते हैं हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे